Hello, Namaskar, Adab, and welcome to another episode of Dil Ki Baat. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपकी सेहतें और मुस्कुराहटें कायम होंगी. आप सब अपने करीबी लोगों को वक्त दे पा रहे होंगे और जिंदगी का हर लम्हा खुल के जी रहे होंगे. अब क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ? लगता है अरसा हो गया है. इतनी चीजें जहन में हैं भी और फिर सोचने बैठूं तो लगता है क्या शेयर करूं और क्या नहीं. यूं ही जाने अनजाने न जाने कब दिल की बात पॉडकास्ट का दूसरा जन्मदिन आया और निकल भी गया. आपको मुझे और मुझे आपको जानते हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर ना आपने विश किया ना मैंने ही कोई शमा बुझाई इस बार. इस रिश्ते में ना अब एक ठहराव है शायद. पहले पहल के मिलने की उत्सुकता शायद नहीं है उतनी अब. अब हम आपस में अपनी शख्सियत और इस रिश्ते के साथ इतने आसोदा, इतने कंफर्टेबल हैं कि खामोशी भी शायद बुरी नहीं लगती अब. यही कारण होगा जो आपने अब तक नहीं पूछा कि मैं कहाँ गायब हूँ. हाँ, एक्सप्लेनेशन दूंगी, पर आपने नहीं पूछा इस बात पर थोड़ी सी तो खफा हूं शायद. खैर, तो मैं कहां थी? इस बात का जवाब अभी दिए देती हूं. मैं अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए छुट्टियों पर गई थी और छुट्टियों से आते ही झट से बीमार हो गई. सोचा नहीं था कि इतना अरसा निकल जाएगा बिना एक भी एपिसोड किए. पर देखिए ना, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. और सच कहूं तो इंस्टाग्राम पे काफी कुछ शेयर कर देती हूँ. आप में से बहुत से लोग जुड़े हैं वहां, तो यूं लगता है कि आपको तो मालूम ही है. पर हाँ, बात तो नहीं हुई. अब ये भी क्या बात हुई कि बात भी नहीं हुई. तो देरी के लिए माफी. आज का शो आपको सैन फ्रांसिस्को और वैंकूवर की गलियों से भेज रही हूँ. लिखा वही था पर फिर एडिट नहीं कर पाई. समर ट्रिप के लिए सपरिवार यहाँ वेस्ट कोस्ट आई थी. सोचा आज आपको यहीं के किस्से कहानियां सुनाऊं. तो चलिए आज आपको अपनी मेमोरी लेन में लिए चलती हूँ. तो हमने ये ट्रिप शुरू किया वेगस से. जून के महीने में वेगस का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा रहता है. हम वहाँ सबसे पहले हूवर डैम देखने गए. 1930 में बना ये डैम आर्किटेक्चरल मार्वल तो है ही, साथ ही साथ अपने आप में एक पूरा साइंस लेसन है बच्चों के लिए. ये अमेरिका में सबसे बड़ा डैम है एंड डैम्स फैसिनेट मी. शायद इसलिए कि ये पानी को रोक देते हैं. द माइटी रिवर, एक डैम उसे बांध देता है. और ये ताकत हम मनुष्यों में ही है कि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते. मैंने ना एक डैम बनते हुए देखा है. जब वो डैम बन रहा था तब मुझे वहां जाने का मौका मिला था. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो रावी नदी पर बना है. नवंबर 2003 में जब वो बन रहा था तब मुझे वहां जाने का मौका मिला था. सतह से कई फीट नीचे जाकर देखने का मौका मिला. नजारा बस यूं था कि सब तरफ कॉन्क्रीट, सब तरफ काम चल रहा था, जैसे किसी माइन में गए हो. बिल्कुल जैसे फिल्मों में दिखाते हैं. ऊपर बनी हुई कंक्रीट की छत से पानी टपक रहा था. मैंने पानी के गिरने का कारण पूछा तो बताया गया कि हम पानी के काफी नीचे हैं. आसपास बहुत सी टनल्स थी. सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग था और बहुत स्केरी भी. खैर, वापस चलते हैं हूवर डैम. तो वहाँ इतनी गर्मी थी कि हमारे साथ साथ हूवर डैम भी मेल्ट हो रहा था. कुछ देर वहाँ पिक्चर्स लेने के बाद हम गए ग्रैंड कैनियन देखने. ग्रैंड कैनियन की खूबसूरती ना बहुत अलग है. वहाँ हरियाली नहीं होती ज़्यादा, रेगिस्तान जो है, पर फिर भी वो जगह काफ़ी खूबसूरत है. ग्रैंड कैनियन मुझे लगता है उन जगहों में से एक है जो आपके जहन से गुजरते वक्त थोड़ा सा ठहर जाती हैं. होती है ना ऐसी कई जगह जहां से आप भले ही गुजर जाएं पर वो जगह आपके जहन में जल्दी से नहीं गुजरती। दीज कैनियंस आर ट्रूली ग्रैंड एंड दे मेक यू फील देयर ग्रैंडर। खैर, वेगस में रात बिता के, वहां की रौनकें देख के, बेलाजियो के म्यूजिकल फाउंटेन्स देख दाखकर अगले दिन हम चले माया नगरी यानी कि होम ऑफ द हॉलीवुड एलए की तरफ। वेगस से एलए की ड्राइव वैसे तो सिर्फ 4 घंटे की ही है, पर जून के महीने में ना एक्स्ट्रा लगती है। मीलों तक एक सीधी साधी सड़क पहाड़ों के बीच से जाती हुई और आसपास 50 shades ऑफ ब्राउन। आसपास सच में कुछ है ही नहीं। वो मूवी देखी है आपने, खुदा गवाह? तो यहाँ इन सड़कों पे मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी जैसे बादशाह खान शायद यही कहीं आसपास रहते हों। खैर, एलए आते आते टोपोग्राफी एकदम बदल जाती है। सुंदर हरे रंग वाली हिल्स नजर आने लगती हैं और ट्रैफिक बढ़ने लगता है। माया नगरी में वैसे कुछ तो बात है, वहां की भागदौड़ सदर्न स्टेट से अलग है, पर मुझे ना एलए बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग द क्रेजी ट्रैफिक, द हसल बसल, ऑल ऑफ इट। आई थिंक द सिटी इज ब्यूटिफुल, शायद इसलिए कि ये सपनों का शहर है। एलए से सैन फ्रांसिस्को ड्राइव करते वक्त रास्ते में एक छोटा क्वेंट क्यूट सा यूरोपियन विलेज आता है, सॉलवैंग। अगर आप उस तरफ जाएं तो यहाँ जरूर रुकें। कॉफी के लिए बहुत फेमस है यहाँ की कुछ दुकानें। पता है एलए से सैन फ्रांसिस्को की ड्राइव बहुत फेमस है, इसे स्टेट राउट 1 या पैसिफिक हाईवे भी कहते हैं। एक तरफ पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ों को काटती सांप नुमा सड़कें। और अगर आप मेरी तरह शाम के वक्त इस सड़क पे हो तो सुरमई आसमान और मीलों तक फैली खामोशी के बीच खुद को खो देंगे। दरिया की जिंदगी पर सदके हजार जाने, मुझको नहीं गवारा साहिल की मौत मरना। वैसे तो मुझे दरिया से ज्यादा पहाड़ पसंद है, अर्थ साइन हूं ना, पर यहाँ की खूबसूरत शाम देखने के बाद मन जैसे यहीं अटक गया हो। सैन फ्रांसिस्को में हालांकि करने को बहुत कुछ है, बहुत खूबसूरत सिटी है ये, पर यहाँ जेब कतरों का बहुत डर रहता है, इसलिए संभाल कर जाएं और पार्किंग में कार लगाएं तो उसमें कोई सामान ना छोड़ें। और हाँ, सैन फ्रांसिस्को की गर्मियां ना बहुत ठंडी होती हैं, तो एक्स्ट्रा लेयर्स लेकर जाएं। सैन फ्रांसिस्को में सॉसालीटो करके एक और बड़ा छोटा खूबसूरत सा शहर है जो ओशन के किनारे बसा हुआ है। एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स द फेमस फिशरमैन्स वॉर्फ। ये सब छोटे छोटे शहर पानी के किनारे बसे होने की वजह से काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हैं। देन ऑफ कोर्स वी वेंट टू गोल्डन गेट ब्रिज आफ्टर दैट। गोल्डन गेट ब्रिज के आसपास भी कई सारे पार्क्स हैं। टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक ही पार्क जा पाए और हमने चुना जापानीज टी गार्डन्स। पार्क तो छोटा ही है, पर सैन फ्रांसिस्को की ठंड और फॉग इसे उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बना रही थी। ठंड इतनी जैसे मसूरी आए हों। मौसम तो था एकदम चाय पकौड़े वाला, पर ब्लैक कॉफी और जापानीज ग्रीन टी कुकीज के साथ समझौता करना पड़ा। पर वो शाम काफी यादगार रही। अगला पूरा दिन हमने नापा वैली में बिताया। याउंटविल के डाउनटाउन और उसके खूबसूरत रेस्टोरेंट्स देखने लायक है। सैन फ्रांसिस्को में 2-3 दिन बिताकर हम विमान पर बैठकर पहुंचे वैंकूवर, कनाडा। सबसे पहले वैंकूवर जाते ही हमने गुरुद्वारे में माथा टेका। गरम हलवे के प्रसाद से आधी थकान उतर गई हो जैसे। वैसे धन्य हैं ये मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चेस, जो परदेश में भी अपनापन बनाए हैं, जो परदेश की ठंडी हवा में हाथ फैलाकर खड़े रहते हैं आपको गर्म जोशी देने, जो आपकी थाली में लंगर डालने से पहले ये नहीं पूछते कि आपका धर्म क्या है, बस सिर्फ पेट भरते हैं। मैं जानती हूँ यहाँ कितने ही स्टूडेंट्स, बेरोजगार, जरूरतमंद और जीवन से थके हारे लोग रोज सिर्फ इसलिए भी आते हैं कि भरपेट खाना मिलेगा। मैं खुद भी इस दौर से गुजरी हूँ जहाँ गुरुद्वारे बैठकर जी भर रो लेने के बाद पेट भर खाना भी खाया है, जहां अपना दुख मन ही मन उस ईश्वर को सुनाया है और बेहतर दिनों की अरदासें की हैं। मैं कई बार आधा दिन गुरुद्वारे में सेवा करते बिता दिया करती थी, क्योंकि घर नाम की चार दीवारी में अकेलापन खाने को दौड़ता था। खैर, हम मुद्दे से भटक गए। तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के बाद हम वैंकूवर घूमे। दिस टाउन इज पिक्चरेस्क। यहाँ भी SFO की ही तरह एक हाईवे है, विच इज बाय द ओशन, और इस हाईवे का नाम है Sea to Sky हाईवे। और उसके किनारे बसा है एक और छोटा सा विलेज जिसका नाम है Horseshoe Bay। तो बस यूं ही इधर उधर दो दिन घूम कर वी फ्लू टू टोरंटो। तब तक हमें घर से निकले 15 दिन हो चुके थे और अब घर की याद सता रही थी। नायग्रा फॉल्स और नायग्रा ऑन द लेक देखकर हमने अपनी गर्मी की छुट्टियों वाला वेस्ट कोस्ट ट्रिप वहीं एंड किया। खूब सारी यादें अपनी चांदी की डब्बी में और अपने फोन में भरकर लौट के बुद्धू घर को आ गए। अब क्या है ना कि ये सब कहानियां आपको बताए बिना मेरा खाना हजम नहीं हो रहा था। अगर आपने मेरी स्टोरीज इंस्टाग्राम पर देखी हैं तो आप जानते ही हैं कि मुझे दोबारा टोरंटो आना पड़ा। एक जरूरी काम के सिलसिले में मैं दोबारा यही हूँ। ये एपिसोड वहीं से भेज रही हूँ। शुरू वेस्ट कोस्ट पे किया था, खत्म यहाँ कर रही हूँ। अभी कुछ दिन और हूँ यहाँ पर। आप में से कोई अगर टोरंटो रहते हैं तो जरूर बताइएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। काफी बातें बातें हो गई। आपको भी कोई जरूरी काम निपटाने होंगे तो जाइए और अपने अपने काम निपटा लीजिए। मैं इस बार इतनी देर नहीं लगाऊंगी वापस आने में, जल्द ही वापस आती हूँ। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। सच, आपके मैसेजेस हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तो भेजने में ना कंजूसी ना किया करें। पता है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी उन मैसेजेस को देखकर होती है जो कि आप लोग भेजते हैं, वरना इंस्टाग्राम पर मैसेजेस की कमी नहीं। पर आप लोगों से एक अलग सा रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, इसलिए ज्यादा कंजूस मक्खी चूस बनने की कोई जरूरत नहीं। दिल खोल के मैसेज कीजिए। आपका मन हो और वक्त इजाजत दे तो जरूर लिखें। माई ईमेल एड्रेस इज dilkibaatpodcast@gmail.com और ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल rituvarma24। ईश्वर करें कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी खूब यादगार बीते। आप अपने अपनों के साथ खूब मेमोरीज बनाएं और उन्हें अपनी गुल्लक में या चांदी की डब्बी में इकट्ठी कर पाएं। इसी दुआ और उम्मीद के साथ मैं हूं ऋतु, और अगले एपिसोड में हम फिर करेंगे दिल की बात।